ओम शांति। तो बाबा तीन प्रकार के स्नेही वृक्षों का वर्णन कर रहे थे। पहले वो जो स्नेह करते हैं, दूसरे वो जो निभाते हैं, तीसरे वो जो स्नेह में समाये हुए रहते हैं। पहले स्नेह करते हैं, परंतु कभी कभी बाप की बजाय व्यक्ति साधनों से भी स्नेह करते हैं। उनकी प्रीत सदा नहीं है, कभी है कभी नहीं है। दूसरे जो है वो उनसे आगे है, वो स्नेह निभाते हैं, बाप के स्नेह का रिटर्न देते हैं, और बाप भी उनको उनके स्नेह के रिटर्न में पदम गुना मदद, हिम्मत, उल्लास देते हैं। तीसरे वो जो सदैव बाप के स्नेह में समाये हुए रहते हैं, अलग है ही नहीं, जुदा हो नहीं सकते। हाँ, उनको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे सदैव बाप के स्नेह में समाये हुए रहते हैं। बाप ही उनका एक संसार होता है। तो संसार में आकर्षित करने वाली दो ही बातें हैं। कौन सी दो बातें?
संबंध और संपत्ति।
एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभव व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। एक है व्यक्ति, एक है साधन या वैभव या वस्तु, दो ही आकर्षण है। व्यक्तियों का आकर्षण, व्यक्तियों का संबंध और दूसरा साधन। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता रहता है। सर्व संबंध एक से, कलयुग के जितने संबंध है वो सभी क्या है? बंधन के कारण है। कल का वरदान बीज क्या है? संबंध। अगर संबंध है तो मोह होगा, अगर मोह है तो बंधन होगा। बीज को ही नष्ट कर दो, जब तक बीज नष्ट नहीं होगा, टाल टालियों को काटने से कुछ नहीं होगा। बीज को ही नष्ट कर दो। बीज है संबंध, भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न आत्माओं से संबंध, लौकिक या अलौकिक। वो लोहे का पिंजरा है तो ये सोने का, इसमें भी आत्माएं बंध जाती है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक पाप है। सर्व प्राप्तियों का आधार, सहारा एक पाप है, न कि वैभव का साधन। किसी भी साधन को यदि आधार बनाया तो साधन के न रहते ही हम दुखी हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को यदि आधार बनाया तो हमारे जीवन की डोर उसके हाथ में रहेगी। कोई भी व्यक्ति यदि हम किसी भी व्यक्ति को आधार बनाते हैं तो हम हलचल में आते रहेंगे। तो वैभव व साधन क्या है? रचना है, और बाप रचता है। जिसका आधार रचता है उसको रचना द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। तो साधन और व्यक्ति क्या है? रचना। बाप क्या है? रचयिता, रचता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, फुल स्टॉप है। चलते चलते बीज को छोड़ डाल डालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं, क्योंकि एक तरफ बीज, एक तरफ डाल डालिया। सुंदर कौन है? डाल डालिया। बीज में क्या सौंदर्य? बीज है, दिखाई चलो दिख भी गया तो उसमें आकर्षण कितना है। डाल डालियों के रंग बिरंगी सौंदर्य होता है उसमें,
के साथ फल भी लगे हुए।
क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता, बीज और दूसरा बीज शाश्वत है। अगर देखा जाए आकर्षण अल्पकाल की वस्तुओं की तरफ ज्यादा होता है, जो सदैव है उससे आकर्षण कम रहता है आत्मा का। जो क्षणभंगुर है उसकी तरफ आकर्षण ज्यादा होता है, और डाल डालियों का रूप रंग बड़ा शोभनीक होता है, इसलिए आकर्षण कहाँ है? डाल डालियों की तरफ। देहधारी के संबंध का आधार, देहधारियों के संबंध का आधार देहभान में सहज अनुभव होता है। ध्यान से सुनो इसको, देहधारी के संबंध का आधार देहभान में सहज अनुभव होता है और बाप का आधार देह भान से परे होने से अनुभव होता है। देहधारियों के जो संबंध है उसका अनुभव के लिए देह भान की आवश्यकता है, बाप के संबंध में के अनुभव के लिए देह भान से परे होने की आवश्यकता है। ये अंतर है। तो जल्दी किसका अनुभव होगा फिर? देहधारियों का, क्योंकि देह भान की जन्म जन्मांतर की आदत है, देहभान में आने की आदत तो है ही, न चाहते भी हो सकता है, वो इतना सहज अनुभव होता है, सहज योग लगता है उनके साथ। इसलिए देहधारी के संबंध का आधार वह सहारा सहज अनुभव होता है। एक तो शोभनीक है टालटालिया, दूसरा वहां पर देहभान की आवश्यकता है जो तो हमें भरपूर है, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, भरा पड़ा है। समझते भी है कि ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। बाप दादा देख देख मुस्कुराते रहते हैं, भगवान को हंसी आती है, सहारे दाता बाप है, उसको छोड़कर किसको पकड़ते हैं? टालटाली को पकड़ते हैं। उस समय की स्थिति हंसने वाली होती है। बाबा उदाहरण देते हैं, जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हो, उसको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके पर बैठ कर करके बोल रहा है। ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते कि एक बाप दूसरा ना कोई, प्यार लगा किसी से, छुप छुप के चिटकियां लिखते हैं। कल था मुरली में प्राइवेट मैसेजेस, पहले चिट्ठियां, अभी उसको भी टाइम लगता है पहुंचने के लिए, फिर मैसेजेस आए, मैसेज में भी पैसे लगते थोड़े, अभी व्हाट्सएप। बाबा ने बोला किसी से संबंध नहीं रखो, अभी विज्ञान ने नया साधन निकाला है फेसबुक, जिसमें नए नए संबंध जोड़े जाते हैं, ढूंढे जाते हैं किससे फ्रेंडशिप करो, तो उसमें ढूंढा जाता है। तो ये तो कर रहे हैं बच्चे, परंतु अपने मन में क्या सोचते हैं फिर? एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, संबंध किसी और से जोड़ रहे, परंतु मन में क्या सोच रहे? एक बाप दूसरा ना कोई। बार बार अपने आप से रिपीट भी करते हैं, लेकिन साथ साथ फिर यह भी सोचते हैं कि स्थूल में तो सहारा चाहिए, जरूरी है, तो बैलेंस रखते हैं। सहारा एक बाप एक तरफ, मन ही मन अपने आप से कहते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, और दूसरी तरफ अपने मन को यह भी समझाते हैं कि सहारे की आवश्यकता है। श्रीमत है, इसे कहा जाता है सुविधाजनक श्रीमत, अपनी सुविधा के अनुसार श्रीमत को परिवर्तित करना, मॉडिफाइड श्रीमत, श्रीमत ऑफ कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार। हेल्प के लिए तो बाबा ने उस आत्मा को निमित्त बनाया है, हमारी मदद के लिए, साकार में कोई तो चाहिए। तो उस समय हंसी आएगी ना, और उस समय फिर माया चांस लेती है, बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव। माया क्या करेगी? ऐसा बुद्धि को फिरा देगी कि जो झूठ है वो सत्य लगेगा, जो असार है वो सार युक्त लगेगा, जो अनित्य है वो नित्य लगेगा, जो रॉन्ग है वो राइट लगेगा। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है, ऐसे उस समय रॉन्ग राइट अनुभव होता है, और वो रॉन्ग बात झूठा सहारा उसको पक्का करने के लिए, फिर वह झूठ को सच साबित करने के लिए, जैसे कोई भी कमजोर स्थान होता है तो उसे मजबूत करने के लिए क्या करते हैं? पिलर्स लगाते हैं। तो माया भी कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। ये वरदान था कुछ समय पहले किसी मुरली में। क्या पिलर्स लगाती है? एक पिलर तो चिमन भाई ने बता दिया कि बाबा ने उसे निमित्त बनाया है। माया यह संकल्प देती है, ऐसा तो होता ही है।
थोड़े समय के लिए रखते हैं, फिर बाद में छोड़
बाद में
देंगे।
छोड़ देंगे, थोड़े समय के लिए क्या है, तो अभी जरूरत भी तो है हमको, क्योंकि जरूरत के समय तो बाबा तो साक्षी है ना, तो करता कुछ नहीं। कई बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं, हम ही नहीं, बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास कि इन्होंने भी सहारा बना रखा है इसको, तो उससे हम जो कर रहे हैं उसमें और बल पड़ता है। ऐसे ही चलते हैं, या कहते हैं अभी तो पुरुषार्थ ही है, संपूर्ण थोड़ी पड़े जो सारे सहारे छोड़ दे, संपूर्ण तो हुए नहीं है, जरूर अभी कोई ना कोई कमी रहेगी, कमी है परंतु कमी तो रहेगी ना, सारी कमी अभी थोड़ी। बाबा ने तो मुरलियों में साकार में कहा है कि अंत तक विकार आएंगे, माया आएगी, तो कमी तो रहेगी, आगे चल संपूर्ण बन जाएंगे, तब सारा छूट जाएगा स्वतः ही। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं, तो ऐसे पिलर्स का आधार नहीं लेना, सारे आधार छूट जाए, सारे पिलर्स गिर जाए, समय आने पर यह आर्टिफिशियल पिलर्स, कृत्रिम पिलर्स है, क्या करेंगे, धोखा देंगे। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता इस संसार में, क्या कर सकते हैं, किसी का भरोसा नहीं है संसार में, साधनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। विश्वास योग्य केवल एक परमात्मा ही है, सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, यह अनुभव कम करते हो, यह अनुभव कम करते हो। एक वो ही सहारा है, एक वो ही आधार है, उसके अतिरिक्त उसके सिवा हमारा और कुछ नहीं है, ना कोई था ना कोई है और ना कोई रहेगा। जो थे वो कभी थे ही नहीं, वो भास रहा था कि वो है, ना ही है और ना ही रहेंगे, वो केवल मन की एक भ्रांति थी कि किसी को लगता है कि ये हमारा है वो हमारा है, कोई किसी का नहीं है। इस सर्वसंबंध के अनुभव को बढ़ाओ, सर्व संबंध एक से जब होंगे तो ही सर्व संसार के जो संबंध है वो छूटेंगे, जो बीज है संबंध, अगर संबंध है तो मोह होगा और मोह है तो बंधन है, और बंधनों में आत्मा अगर फंस गई तो वहां फिर दुख है, वशीभूत है। तो सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाओ।
मोबाइल खत्म, तो मोबाइल खत्म।
सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं ना कहीं अल्पकाल का संबंध जुड़ जाता है, सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं है, इसके लिए आत्मा तृप्ति चाहती है, इस स्वयं की प्यास को बुझाने के लिए वो आत्माओं से संबंध जोड़ती है, संबंधों में सुख प्राप्त करती है, किसी को कुछ बनाती है किसी को कुछ बनाती है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा, वह हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। कितनी बड़ी बात कह रही बाबा ने, बाबा केवल सूक्ष्म सहयोग नहीं देता है, स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा, स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा, वह हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है, परंतु सारे दूसरे सहारे छोड़ने पड़ेंगे, ये शर्त है। अगर इसको इसको पुकारते रहे तो वो सहारा नहीं देगा, उसके सहारे का अनुभव नहीं होगा। जैसे कोई एक यात्री है, वो पर्वतीय क्षेत्र से गुजर रहा है, निर्जन स्थान है, अनजान है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और अचानक चट्टान से उसका पैर फिसलता है, पूर्णिमा की रात है, चारों ओर अंधकार समाया हुआ है, संभाव्य मृत्यु का दर्शन होता है उसे। पैर फिसला और एक झाड़ी को पकड़ लिया उसने। ऊपर अंधकार, नीचे अंधकार, एक बहुत गहरा गड्ढा नीचे। कैसी सिचुएशन है ये, कैसी स्थिति है? चारों ओर अंधकार ही अंधकार, आसपास कोई नहीं, निर्जन स्थान है, और बस वो झाड़ी को पकड़ा हुआ है। इतना जोर से पकड़ा हुआ है क्योंकि मृत्यु का साक्षात दर्शन हो रहा है उसे, कि ये झाड़ी को छोड़ा कि नीचे मृत्यु है, पता नहीं कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, अंधकार ही अंधकार। ऊपर से आकाशवाणी होती है, टाली को छोड़ दो। वो कहता है नहीं छोड़ूंगा। मन में संकल्प आता है कि कैसे छोड़ू, उसी के आधार से तो रहा हूं, उसको यदि छोड़ दू तो न जाने कितनी गहरी खाई है नीचे, कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और फिर कई घंटे बीत जाते हैं, पकड़ा रहता है। रात में ठंड बढ़ती है,
अंधकार में खाई कैसे दिखते हैं?
खाई उसको लग रहा है,
अच्छा लग,
चट्टान से कोई फिसल गया और एक टाली को पकड़ लिया है उसने, और नीचे पता नहीं क्या है, अज्ञात है,
पैर लटका हुआ है,
पैर लटके हुए हैं दो और टाली पकड़ी हुई है। आकाशवाणी होती है कि छोड़ दो, कैसे माने आकाशवाणी को जबकि संभव भी मृत्यु सामने है। पकड़े रहता है, पकड़े रहता है, रात गुजरती जाती है, पकड़े रहता है, पकड़े रहता है, ठंड बढ़ती जाती है, हाथ ठंडे हो जाते हैं और जवाब दे देते हैं, और जोर से गिरता है नीचे, आंख बंद कर लेता है, ईश्वर को याद करता है, देखता है कि जमीन पर खड़ा है, वो खड्डा था ही नहीं। ऐसे ही उसे आभास हुआ, तो सारे सारे जो है अंधकार में रात्रि के वो सहारे हमको लग रहा है, हम उन सहारों के आधार से लटके हुए हैं। भगवान कह रहा है सबको छोड़ो, हम कहते हैं नहीं छोड़ेंगे, हम उसको छोड़ देंगे तो मर जाएंगे, हमें विश्वास ही नहीं है उस वाणी पर। वो कह तो रहा है कि सर्व संबंध मुझसे जोड़ो, हम सोचते सर्व संबंध तुमसे अगर जोड़ दिए, कहने को तो कह दिया, एक बात दूसरे को कहने को क्या जा रहा है, परंतु अंदर से सबसे संबंध बनाए रखे है, स्वयं को सुरक्षित कर रखा है, ये हुआ तो ये आधार है, ये हुआ तो ये सहारा है, ये हुआ तो वो है, अंदर में सबको रखा हुआ है। और भगवान कहता है छोड़ दो इस राग डालियों को, एक सहारा बाप है। तो हर परिस्थिति में, स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा, स्थूल जीवन में स्थूल रूप का सहारा।
मैगजीन में एक बार माता का अनुभव है,
नहीं
माता को टैक्सी में जा रहे थे, पर्स से पैसा निकाल रहे थे, बड़ा अमाउंट था, बाबा के लिए लेके जा रहे थे, तो उसने देखा तो उसकी नजर पड़े, उसकी थोड़ा नियत खराब हो गई, उसने रूट चेंज कर दिया, तो रूट चेंज कर दिया तो भाई इधर कहाँ जा रहे, रास्ता तो इधर है माता जी, तो एक बार बोलने से नहीं माता जी रास्ता खराब है, तो उसको एग्रेशन तो माता जी को कौन अब तो क्या करें, तो उसने एक बाबा को बोला बाबा तुम्हारे लिए लेके जाए, तो भी अपना तुम्हारे बच्चा इसको समझा, तो कहीं गाड़ी थोड़ा धीरे में हो गई, वो कोई आके बैठा आवाज हुआ ड्राइवर, उसने दिल से बाबा को याद करते रहे बस, और कुछ नहीं हुआ, और कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर जब उतरा ना, जब उस समझ गए इसको कोई है, तो प्रॉपर जगह छोड़ा, तो 100 रुपए कुछ बात हुआ ना, तो उसने 100 रुपए दिया, 100 रुपए दिया माता जी ने, तो बोला 150 रुपए, 50 रुपए दूंगी, 100 रुपए में बात हुई थी, जब वो बुढ़ा बैठा था ना तो आपने बिठाया था। उसको याद आया वो फोटो था बाबा का, दिखाया यही था हमने, यही तो था, तो 150 रुपए दिया, फिर बाबू को भाड़ा दिया,
तो सस्ते में हो गया काम तो।
बाबा ने मना उसको 50 दे दिए बेटे, ले ले लो।
तो हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। यह अनुभव और बड़ा हो, स्थूल में भी वही सहारा है। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, केवल इतना मत समझ लेना। निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो, साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो। इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो। इस अनुभव को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो तो व्यक्ति, वैभव व साधन अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैभव, कोई भी साधन आकर्षित ना करे। साधनों को क्या करो, निमित्त मात्र कार्य में लाना है। और एक चीज, वह साक्षी वो सेवा प्रति कार्य में लगाना है। ऐसे अनुभूति को बढ़ाओ, साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लगाना है या फिर साक्षी होकर सेवा के प्रति कार्य में लगाना है। साधन तो जरूरी है, साधनों को यूज करना है, परंतु साक्षी होकर, परंतु निमित्त मात्र। सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो। वो है तो ही हमारा पुरुषार्थ ये ना हो। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। ये सब निशानियां किसकी है? स्नेह में समाई हुई समान आत्मा की। तो अपने से सोचना है कि मैं कौन। समझा? अच्छा, तो तीन प्रकार के स्नेही में, पहले जो है वो स्नेह करने वाले। तो बाप से कभी स्नेह करते हैं तो कभी साधनों से भी स्नेह करते हैं, और जब साधनों से स्नेह करते हैं तो बाप का स्नेह कम हो जाता है। एक साथ दो को प्यार नहीं किया जा सकता, यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। इससे प्यार करोगे तो उसका प्यार स्वतः ही कम हो जाएगा। ही हु लवेथ हिज मदर एंड फादर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। जीसस क्राइस्ट कहता है बाइबल में, He who loveth his mother and father more than me is not worthy of me। जो अपने लौकिक माँ बाप को मेरे से अधिक प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है। He who is married thinks of his wife that how he shall please her। He who is unmarried shall think of the Lord that how he might please the Lord। जो विवाहित है वो ये सोचता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे खुश करूं। जो अविवाहित है वो ये सोचता है कि मैं प्रभु को कैसे खुश करूं। ये बाइबल के महावाक्य है। जो जितना बंधनों में फंसा है वो उतना उन्हीं आत्माओं के चक्कर में रहता है, याद करते रहता है। जो बंधनों से मुक्त है वही इस मार्ग पर चल सकता है। तो वो पहले नंबर की आत्मा है जो स्नेह कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां। कभी बाप अच्छा लगता है, मधुबन आए तो बस बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा, अशरीरीपन का अनुभव। दिन रात ऐसा लगता है बस यहीं रह जाओ। यहाँ आए तो बाबा और उधर गए तो वो, उधर गए तो उधर के बनते, इधर आए तो इधर के बनते हैं। यहाँ आए तो बस सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता। यहाँ आए तो बस अशरीरीपन का निरंतर अनुभव। यहाँ आए तो अश्रु धारा बहने लगती है प्यार में बाप के, और वहां गए तो यहाँ का लाइट बंद हो जाता है, उधर का लाइट चालू होता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये बंद वो उधर का चालू, फिर इधर आए तो इधर का चालू उधर का बंद। बैलेंस ऐसी भी है। तो ये है स्नेह करने वाले। फिर है निभाने वाले, बहुत आगे है उनसे। निभाने वाले और समय लगभग बहुत समीप है। वो निभा रहे हैं, बाप जो कह रहा है वो कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उस पर न्योछावर है, सब कुछ कर रहे हैं, और बाप भी रिटर्न में उनको मदद कर रहा है, उल्लास दे रहा है, उमंग दे रहा है, सब कुछ कर रहा है उनके लिए बाप। बाप अभी बंधा हुआ है। योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में महावाक्य है कि जो अनन्य भाव से मेरे शरण में है, मनमना भाव मध्याजी वक्ता माम नमस्कारो, जो मेरी शरण में मुझे श्रद्धा भाव से नमस्कार करता है, जो अपने मन में मुझे बिठाए हुए है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसका संपूर्ण जिम्मेवारी मेरी है, मैं लेता हूं उसका सब कुछ, मेरे ऊपर है उस आश्रित। तो बाप भी रिटर्न में उन्हें हिम्मत, उमंग, उत्साह सब कुछ देता है। तो ये निभाने वाले उसके भी आगे की अवस्था है, समाये हुए है, अलग है ही नहीं, संयुक्त है, कंबाइंड है, विभक्त है ही नहीं उससे, कभी उससे अलगाव की स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो रही है, सदा उसमें है, वो उनमें है, वो उसमें है, जैसे कि हम नहीं है, वो चल रहा है हमारे साथ साथ, उसका वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट अनुभव कि वो ही है। हम जो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, उसकी वाणी इधर से निकल रही है, हम जो कर रहे हम नहीं कर रहे, वो ही करा रहा है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव। हम तो खाली कठपुतली मात्र है, ये जो अनुभव है वो है समाई हुई आत्माओं का अनुभव। तो ऐसी आत्मा कभी भी किसी भी व्यक्ति की तरफ, किसी भी वस्तु, साधन, वैभव की तरफ आकर्षित नहीं होगी, ये उनके सामने बहुत फीके है। तेरे प्यार के आगे हर चीज अफीका, वो ताज अफीका, वो तख्त अफीका, की थे ना, तेरे प्यार के आगे हर चीज अफीका, वो ताज फीका, वो तख्त फीका। तो ऐसी अनुभव की हम है तुम्हारे, तुम हो हमारे, बाबा ये कितने क्या प्यारे नजारे। ऐसा दिव्य अनुभव हो आत्मा को कि उसमें हम और हम वो हम है। वी लीव मूव एंड हैव अवर बीइंग इन हिम, बाइबल में वाक्य है, वी बिलीव हम जीते हैं, वी मूव हम चलते हैं, वी हैव अवर बीइंग इन हिम हमारा सब कुछ वो है, उसमें ही हम समाये हुए हैं, चलना उठना बैठना, नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम हिम, ऐसे महावाक्य है उसमें कि वो और हम जैसे एक है। ऐसे संयुक्त स्थिति का अनुभव, ऐसे साथ का अनुभव, ऐसे सामिप्य और सानिध्य का अनुभव आत्मा को इस संसार से बहुत ऊंचा उठा देता है। फिर इस संसार से उठने के लिए देवेंद्र भाई कह रहे थे ना, योग करने के लिए बहुत ट्रेमेंडस एनर्जी की जरूरत होती है ऊपर उठने के लिए, जैसे रॉकेट होता है, उस रॉकेट को ऊपर जाना है तो कितनी पावर चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को अतिक्रमण कर कर उसको ऊपर जाना है। इस देह और देह की दुनिया से आत्मा योग का अनुभव करे, यहां से ऊपर उठने के लिए उसको प्रचंड शक्ति ऊर्जा की आवश्यकता है, ऐसी प्रचंड ऊर्जा और शक्ति उसको पवित्रता के बल से ही आएगी, तभी वो आत्मा इस संसार के भान से ऊपर जा सकती है, वहां जहां देह ना है और ना देह का ज्ञान, हम उड़ के चले जाए ऐसी जगह पर जहां देह ना है और ना देह का ज्ञान। उस स्थिति पर पहुंचने के लिए ये संसार के सारे आकर्षणों से छूटने के लिए एक ट्रिमेंडस एनर्जी चाहिए, प्रचंड ऊर्जा, जिसको आत्मा योग से ही प्राप्त कर सकती है, और सर्व संबंधों का अनुभव जब होता है तो ही ऊपर जा सकते, नहीं तो किसी को भी कितनी ब्राह्मण आत्मा है कहां उड़ पाते ऊपर। योग में बैठते हैं, शरीर बैठता है, पर आत्मा उड़ नहीं पाती है, क्योंकि उड़ने के लिए वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध में जाकर आत्मा को उड़ान भरनी पड़ेगी, वो परवाज जो होगा वो बहुत ऊंचा है। तो ऐसी स्थिति के लिए सहारेदाता एक बाप है, केवल कहने मात्र नहीं एक बाप, दूसरा ना कोई, जैसे वो पक्षी की तरह, परंतु उसका प्रत्यक्ष अनुभव, उन टाल टालियों में कुछ नहीं है, ये साक्षात अनुभव, ये सब टाल टालियां सूखने वाली और पतझड़ में गिरने वाली, बीज ही एकमात्र सहारा है यह अनुभव। और केवल स्थूल में नहीं, सूक्ष्म में भी बाप ही एकमात्र सहारा है, सूक्ष्म में भी, सूक्ष्म और स्थूल दोनों में भी बाप ही एकमात्र सहारा, ऐसा अनुभव। और साधनों को निमित्त मात्र यूज करो, साक्षियों का यूज करो, तो सोचो कि इन तीनों में से मैं कौन, तो उत्तर आएगा सबसे पहला वाला, जो केवल प्रेम कर रहे हैं, और कभी बाप से और कभी साधनों से, व्यक्तियों से, समाना और निभाना ऊंची अवस्था है। तो पहले वहां है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना, सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को, सदा एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप को आधारभूत सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्ति रचता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सहज स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्चे स्नेही आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और समझते अच्छा ओम शांति। कल भाइयों की तरफ से चलो फिर कमलेश भाई ग्रुप नंबर वन ठीक है ग्रुप नंबर वन।